एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी पहली मेजबान।
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। आज हम गोता लगा रहे हैं एक ऐसी किताब में जो सोच को कह सकते हैं कि चुनौती देती है। हेजल ई बार्न्स की ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियलिज्म, द लिटरेचर ऑफ पॉसिबिलिटी।
हाँ, नाम थोड़ा सा भारी लग सकता है शुरू में, लेकिन ये किताब अस्तित्ववाद यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म को बिल्कुल नए और सच कहूँ तो काफी उम्मीद भरे अंदाज में देखती है।
बिल्कुल, अक्सर हम यही सोचते हैं कि भाई अस्तित्ववाद का मतलब है उदासी, निराशा, कि जीवन का कोई मतलब ही नहीं है।
यही धारणा है ज्यादातर।
लेकिन बार्न्स कहती हैं, रुको, ऐसा नहीं है। वो इसे एक मजबूत, सकारात्मक और पूरी तरह से इंसान पर केंद्रित नजरिए के तौर पर पेश करती हैं।
और आज के जमाने में मुझे लगता है बहुत जरूरी है, जहाँ बहुत से लोग परंपरा से हटके अपने जीवन का मतलब ढूंढ रहे हैं, ये बातें और भी ज्यादा मायने रखती हैं।
सही कहा।
तो आज हमारी कोशिश रहेगी बार्न्स के नजरिए को समझना कि कैसे ये दर्शन जो स्वतंत्रता और जिम्मेदारी पर इतना जोर देता है, हमें सिर्फ जीने में ही नहीं बल्कि एक ज्यादा सार्थक और हाँ अपने ढंग का जीवन बनाने में मदद कर सकता है।
बिल्कुल, तो चलिए सबसे पहले लेखिका को थोड़ा सा जान लेते हैं।
हाँ, हेजल ई बार्न्स।
हेजल ई बार्न्स 1915-2008 एक जानी मानी अमेरिकी दार्शनिक थी, क्लासिस्ट भी थी और अनुवादक भी। उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी जां पॉल सार्त्र के मशहूर और काफी मुश्किल माने जाने वाले काम बीइंग एंड नथिंगनेस का पहला अंग्रेजी अनुवाद करने से।
अच्छा, ये 1956 की बात है ना?
जी हाँ, 1956।
जरा सोचिए, ये सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं रहा होगा, ये तो एक पूरे दर्शन को, एक पूरी सोच को दूसरी भाषा और संस्कृति में लाने जैसा था।
वो गहरी समझ मिली, एक अंदरूनी पकड़, जो शायद किसी बाहरी आलोचक को जो सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ रहा हो नहीं मिल सकती थी।
वो सिर्फ पढ़ नहीं रही थी, वो उन विचारों के साथ जी रही थी, एक तरह से उन्हें महसूस कर रही थी।
सही कहा। और उन्होंने देखा कि अमेरिका में लोग अस्तित्ववाद को काफी गलत समझ रहे थे, उसे निराशाजनक मान रहे थे, नकारात्मक, कोई बाहरी चीज और बस खारिज कर रहे थे।
अच्छा, तो उन्हें लगा कि ये सही नहीं है?
हाँ, उन्हें लगा कि ये पूरी तस्वीर नहीं है, इसीलिए उन्होंने ये किताब लिखी। वो दिखाना चाहती थीं कि अस्तित्ववाद कोई, क्या कहते हैं, किताबी पहेली नहीं है,
बल्कि जीवन के असली सवालों से जूझने का एक तरीका है।
हाँ बिल्कुल, कैसे जिए, क्या चुने, जब कोई ऊपर वाला बताने वाला ना हो तब क्या करें। और उन्होंने मुश्किल विचारों को समझाने के लिए साहित्य का सहारा लिया, कहानियों का, किरदारों का।
ये दिलचस्प है, साहित्य के जरिए दर्शन।
हाँ, और उनका जोर हमेशा अस्तित्ववाद के मानवतावादी और ये जरूरी है आशावादी पहलू पर था।
तो ये किताब आखिर है क्या, इसका सार क्या है?
असल में ह्यूमैनिस्टिक एग्जिस्टेंशियलिज्म, नास्तिक अस्तित्ववाद का खासकर सार्त्र, सिमोन द बोवोर और अल्बर्ट कामू के विचारों का एक तरह से बचाव करती है, मतलब डिफेंड करती है।
बचाव इस मायने में कि इसे गलत समझा गया है।
हाँ, बार्न्स का मुख्य तर्क ये है कि इसे उदासी या नैतिकता के खत्म हो जाने का दर्शन मानना एक भूल है।
तो फिर क्या है?
वो कहती हैं कि देखो, ईश्वर का न होना या हमारा कोई पहले से तय स्वभाव या मकसद, जिसे फिलॉसफी में सार, एसेंस कहते हैं, उसका न होना, ये कोई बुरी खबर नहीं है।
अच्छा, ये तो उल्टा लगता है सुनने में।
हाँ, लेकिन वो कहती हैं कि यही वो हालात हैं जो हमें असली आज़ादी देते हैं, अपनी जिंदगी खुद गढ़ने की आज़ादी, क्रिएटिव होने की और अपने नैतिक फैसले खुद करने की। वो इसे कठोर मानवतावाद कहती हैं।
कठोर मानवतावाद मतलब?
मतलब ऐसा मानवतावाद जो किसी बाहरी सहारे की झूठी उम्मीद नहीं देता, जो इंसान की अपनी हिम्मत, अपनी क्षमता पर भरोसा करता है, मजबूत किस्म का।
समझी, तो किताब का बड़ा सवाल यह है कि अगर ब्रह्मांड में कोई पहले से लिखा प्लान नहीं है तो इंसान एक सार्थक नैतिक जीवन जी कैसे सकता है?
बिल्कुल यही सवाल है।
और बार्न्स का जवाब क्या है?
जवाब बड़ा सीधा और शक्तिशाली है। अर्थ कहीं बाहर से मिलता नहीं, उसे हम बनाते हैं।
बनाते हैं कैसे?
अपनी आजादी को पूरी तरह स्वीकार करके, जिसे सार्त्र कहते हैं हम स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त हैं, माने कंडेम टू बी फ्री, इसे स्वीकार करके हम ही अपनी दुनिया में मूल्यों का, वैल्यूज का स्रोत बन जाते हैं।
वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब जिम्मेदारी पूरी हम पर है
पूरी तरह। तो ये किताब हमें अस्तित्ववाद के कुछ बुनियादी विचारों से मिलवाती है, लेकिन एक नए, ज्यादा सकारात्मक नजरिए से। चलिए कुछ मुख्य विचारों को थोड़ा और करीब से देखते हैं।
हाँ जरूर, कहाँ से शुरू करें?
सार्त्र के उस मशहूर सूत्र से शुरू करते हैं, अस्तित्व सार से पहले आता है, एग्जिस्टेंस प्रिसीड्स एसेंस।
हाँ, ये सुना तो है कई बार, पर मतलब क्या है इसका आसान भाषा में?
मतलब सीधा है, जैसे कोई कारीगर मान लीजिए कागज काटने वाला चाकू बनाता है, तो पहले उसके दिमाग में चाकू का मकसद या डिजाइन होता है, उसका सार, फिर वो चाकू बनता है, उसका अस्तित्व।
ठीक है।
लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं है, सार्त्र कहते हैं। हम पहले दुनिया में आ जाते हैं, हमारा अस्तित्व, और फिर अपने कर्मों से, अपने चुनावों से हम ये तय करते हैं कि हम क्या हैं, हमारा सार क्या है।
मतलब कोई रेडीमेड पहचान लेकर हम पैदा नहीं होते?
बिल्कुल नहीं, हम एक कोरी स्लेट की तरह हैं शुरुआत में, और यही हमारी आजादी, फ्रीडम का आधार है। क्योंकि हमारी चेतना, हमारा मन कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो हमेशा बदल सकता है, चुन सकता है, भविष्य की तरफ देख सकता है।
हम कभी भी पूरी तरह से फिक्स नहीं हो सकते कि बस मैं तो ऐसा ही हूँ।
हाँ, ये कहना एक तरह का बहाना है।
लेकिन ये आजादी, ये आसान तो नहीं लगती? इसके साथ कुछ और भी आता होगा।
हाँ, ये आजादी एक बड़ी जिम्मेदारी भी लाती है। सार्त्र इसे पीड़ा कहते हैं।
एंग्विश।
पीड़ा।
क्यों?
ये सिर्फ अपने लिए जिम्मेदार होने का बोझ नहीं है। सार्त्र का कहना है कि जब हम कुछ चुनते हैं, मान लीजिए ईमानदारी चुनते हैं, तो हम अनजाने में ये भी कह रहे होते हैं कि हाँ, इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। हम पूरी मानवता के लिए एक मिसाल कायम कर रहे होते हैं अपने हर चुनाव से।
अरे बाप रे, ये एहसास तो सच में काफी भारी हो सकता है।
बिल्कुल, इतना भारी कि अक्सर हम इससे भागने की कोशिश करते हैं।
भागने की? कैसे?
और इसी भागने को, इसी खुद से झूठ बोलने को सार्त्र बैड फेथ कहते हैं। फ्रेंच में मोविस फॉय।
बैड फेथ।
हाँ,
खुद से झूठ बोलना। इसके कुछ उदाहरण?
हाँ, इसके कई रूप हैं। एक तो ये मान लेना कि हम बदल नहीं सकते, हालात के गुलाम हैं। जैसे कोई कहे, मैं क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, या नौकरी मुझे पसंद नहीं पर छोड़ नहीं सकता, घर चलाना है। ये अपनी स्वतंत्रता से इनकार करना है।
हाँ, ये तो बहुत आम है सुनना, खुद को एक वस्तु की तरह देखना, है ना, जिसमें बदलाव की गुंजाइश नहीं।
बिल्कुल। दूसरा तरीका है अपनी हकीकत से मुंह मोड़ लेना। ये सोचना कि हमारी परिस्थितियां, हमारा शरीर, हमारा अतीत हम पर कोई असर नहीं डालते, जैसे हम सिर्फ शुद्ध चेतना हैं।
अच्छा, सार्थ का वो वेटर वाला उदाहरण बड़ा मशहूर है शायद।
हाँ बिल्कुल, वो वेटर जो इतनी बनावटी, जरूरत से ज्यादा सधी हुई अदा से वेटर होने का नाटक करता है, मानो वो बस एक वेटर ही है, एक इंसान नहीं जो कुछ और भी चुन सकता था या है। वो अपनी आजादी की चिंता से, उस पीड़ा से बचने के लिए एक भूमिका में खुद को कैद कर लेता है।
समझ गए। तो बैड फेथ से बचने का तरीका क्या है?
तरीका है प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी, यानी अपनी आजादी और अपनी स्थिति दोनों को ईमानदारी से स्वीकार करना, ये चुनना। और बांस के लिए इसी बैड फेथ से लड़ना और प्रामाणिकता को चुनना, यही असली नैतिक संघर्ष है जीवन का।
ये कोई एक बार का फैसला नहीं होगा शायद?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये लगातार चलने वाली कोशिश है, हर पल, हर चुनाव में।
फिर बात आती है दूसरों की, दी अदर। सार्त्र की एक लाइन है जो बहुत, कह सकते हैं कि बदनाम है, नरक दूसरे लोग हैं। इसका क्या मतलब है? क्या रिश्ते वाकई नरक हैं?
हाँ हाँ, नहीं, बान समझाती हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि सारे रिश्ते खराब होते हैं या होने चाहिए। सार्त्र का मतलब उस स्थिति से है जब हम दूसरों की नजरों को, द बेज, खुद पर इतना हावी होने देते हैं कि हम खुद को उनकी उम्मीदों के हिसाब से देखने लगते हैं, एक वस्तु की तरह, तब हम अपनी आजादी खो देते हैं।
जैसे लोग क्या कहेंगे वाला डर?
हाँ, कुछ वैसा ही, जब हम अपनी पहचान दूसरों की राय पर टिका देते हैं। लेकिन दूसरे जरूरी भी हैं।
जरूरी कैसे?
उन्हीं के माध्यम से हमें पता चलता है कि हम दुनिया में एक व्यक्ति के रूप में मौजूद हैं, हमारी एक पहचान है जो दूसरों को दिखती है। तो चुनौती ये है कि ऐसे रिश्ते कैसे बने जहां हम एक दूसरे को वस्तु न समझें, बल्कि एक दूसरे की आजादी का सम्मान करें।
ये आसान नहीं लगता।
बिल्कुल नहीं, और साहित्य ऐसी ही मुश्किल इंसानी कश्मकश की कहानियों से भरा पड़ा है।
अच्छा, अब आते हैं अल्बर्ट कामू पर। उनका नजरिया सार्त्र से थोड़ा अलग माना जाता है ना?
हाँ, थोड़ा अलग है, पर बांस उसे भी इसी मानवतावादी ढांचे में फिट करती हैं। कामू का केंद्रीय विचार है अब्सर्ड।
अब्सर्ड,
बेतुकापन।
हाँ, कह सकते हैं। ये है क्या? ये एक टकराव है। एक तरफ इंसान की गहरी इच्छा है, अर्थ की, तर्क की, स्पष्टता की। हम दुनिया को समझना चाहते हैं, उसका कोई मतलब निकालना चाहते हैं।
और दूसरी तरफ?
और दूसरी तरफ है ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, जो हमारे इन गहरे सवालों पर एकदम चुप रहता है, कोई जवाब नहीं देता। वो हमारी तर्क की इच्छा से मेल नहीं खाता। इसी टकराव से अब्सर्ड पैदा होता है। तो इस एब्सर्ड का सामना कैसे करें?
कामु कहते हैं मोटे तौर पर तीन रास्ते हो सकते हैं। पहला, शारीरिक आत्महत्या, मतलब जीवन ही छोड़ देना,
खेल खत्म।
दूसरा, जिसे वो कहते हैं दार्शनिक आत्महत्या, यानी किसी धर्म या विचारधारा में कूद पड़ना जो आपको बने बनाए जवाब दे दे।
अच्छा,
आप सवाल पूछना बंद कर देते हैं और इस तरह उस मुश्किल एब्सर्ड वाली फीलिंग से बच निकलते हैं।
अच्छा,
कामू और बांस इन दोनों को सही नहीं मानते।
नहीं, दोनों को नकारते हैं,
क्योंकि ये एब्सर्ड से भागना है, उसका सामना करना नहीं।
तो तीसरा रास्ता क्या है?
तीसरा रास्ता है विद्रोह, रिवोल्ट।
विद्रोह किसके खिलाफ?
उसी एब्सर्ड के खिलाफ। मतलब ये कि इस एब्सर्ड स्थिति को, इस बेतुकेपन को पूरी तरह जानते हुए इसके सामने हार न मानना, बल्कि इसके बावजूद पूरे जोश, पूरी चेतना के साथ जीना, उस तनाव को गले लगाना।
इसका कोई उदाहरण?
हाँ, कामू का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है सिसिफस की कहानी।
हाँ, वो मिथक वाला पात्र जिसे चट्टान पहाड़ी पर ले जानी होती थी।
बिल्कुल, जिसे देवताओं ने सजा दी थी कि वो हमेशा एक भारी चट्टान को पहाड़ी पर धकेलता रहेगा, और जैसे ही वो चोटी पर पहुंचेगी वो फिर से लुढ़क कर नीचे आ जाएगी, हमेशा के लिए। एक बिल्कुल बेमतलब, कभी ना खत्म होने वाला काम।
उफ, इससे ज्यादा बेतुका और क्या होगा?
सही कहा। लेकिन कामू कहते हैं हमें सिसिफस को खुश समझना चाहिए।
खुश क्यों? वो तो सजा भुगत रहा है।
कामू कहते हैं, सोचो उस पल के बारे में जब चट्टान लुढ़क कर नीचे चली जाती है और सिसिफस पहाड़ी से नीचे उतरता है उसे फिर से ऊपर ले जाने के लिए। उस क्षण में वो अपनी नियति को, अपनी सजा के बेतुकेपन को पूरी तरह जानता है। वो उससे हारा हुआ नहीं है, वो उस चट्टान से, अपनी किस्मत से बड़ा है, वो अपनी चेतना में स्वतंत्र है।
अच्छा,
उसका हार ना मानना, उसका वो रोज का संघर्ष, उसका विद्रोह, यही उसकी जीत है, यही उसका अर्थ बन जाता है। उसका संघर्ष ही उसका अर्थ है।
वाह, ये तो नजरिया ही बदल देता है।
बिल्कुल, और यही से बाण्ड्स हमें अस्तित्ववादी नैतिकता के दिल में ले जाती हैं, मूल्यों का निर्माण।
हमारे चुनाव?
हाँ,
कैसे?
जब हम किसी मुश्किल वक्त में, मान लीजिए, सच बोलना चुनते हैं, तो हम सिर्फ एक बार सच नहीं बोल रहे होते, हम अनजाने में सच को, ईमानदारी को एक मूल्य की तरह स्थापित कर रहे होते हैं, अपने लिए और शायद दूसरों के लिए भी एक मिसाल के तौर पर।
अच्छा, तो हर चुनाव एक तरह से एक नैतिक बयान है।
हाँ, कह सकते हैं। इसीलिए हमारी आजादी इतनी बड़ी जिम्मेदारी से जुड़ी है। हम सिर्फ अपने लिए नहीं चुनते, हम पूरी मानवता के लिए चुन रहे होते हैं, सार्त्र के अनुसार।
बांस इसका कोई उदाहरण देती है?
हाँ, वो सार्त्र के नाटक द फ्लाइज लेज़मूश का उदाहरण देती है। उसका नायक है ओरेस्टीज, वो अपने शहर आर्गोस वाटता है, जो पुराने अपराध बोध और देवताओं के डर में जी रहा है। ओरेस्टेज इस पुरानी नैतिकता को ठुकराता है, वो शहर के अत्याचारियों को मारकर अपनी आजादी का दावा करता है, और ये जरूरी है, वो अपने इस हिंसक काम की पूरी जिम्मेदारी लेता है, बिना किसी बहाने के, बिना देवताओं से माफी मांगे।
तो वो क्या कर रहा है?
ऐसा करके वो एक नया मूल्य बना रहा है, इंसानी आजादी का मूल्य। वो ये दिखा रहा है कि इंसान अपने भाग्य का निर्माता खुद है, वो शून्यवादी नहीं बनता बल्कि मूल्यों का निर्माता बनता है।
ये बहुत शक्तिशाली विचार है,
है ना? और आखिर में बांस इस बात पर बहुत जोर देती हैं कि साहित्य खुद दर्शन करने का एक तरीका है।
अच्छा, सिर्फ उदाहरण देने के लिए नहीं?
नहीं, उससे कहीं ज्यादा। बैड फेथ या पीड़ा या एब्सर्ड जैसे विचार, ये शायद किसी फिलॉसफी की सूखी किताब से ज्यादा किसी कहानी के किरदार की जिंदगी में उसके संघर्ष में ज्यादा साफ समझ आते हैं। साहित्य हमें दिखाता है कि ये विचार असल में जीने में कैसे लगते हैं, उनकी जटिलता क्या है।
तो साहित्य सिर्फ सोच को नहीं दिखाता, बल्कि जीने की संभावनाओं को दिखाता है।
बिल्कुल, बांस मानती हैं कि साहित्य दार्शनिक जांच का एक वैध तरीका है, जहां मानव अस्तित्व की संभावनाओं को ज्यादा गहराई और सूक्ष्मता से खोजा जा सकता है।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा के कुछ मुख्य संदेशों को समेटें, तो पहला क्या होगा? मेरे ख्याल से तो वो स्वतंत्रता और जिम्मेदारी वाली बात सबसे अहम है।
हाँ, परम स्वतंत्रता और पूर्ण जिम्मेदारी। हम पूरी तरह आजाद हैं अपना रास्ता चुनने के लिए, किसी पहले से बनी योजना से बंधे नहीं हैं, पर इस आजादी के साथ आती है पूर्ण जिम्मेदारी अपने हर चुनाव के लिए।
और वो चुनाव सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए एक मिसाल कायम करता है। ये रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखता है, जैसे करियर चुनते समय सामाजिक दबाव होता है, पर क्या हम अपनी मर्जी से चुन रहे हैं और फिर जो भी चुने उसकी जिम्मेदारी लेना?
बिल्कुल। दूसरा बड़ा संदेश अस्तित्व सार से पहले आता है, मतलब हम वो बनते हैं जो हम करते हैं, हमारी पहचान कोई पत्थर की लकीर नहीं है।
हाँ, ये सोचना कितना आजाद महसूस कराता है कि हम अपने कर्मों से, अपने चुनावों से खुद को गढ़ते हैं। जीवन एक खोजा जाने वाला रास्ता नहीं, बल्कि बनाई जाने वाली कलाकृति है। हम खुद को बदल सकते हैं, विकसित कर सकते हैं।
तीसरा, वो प्रामाणिकता बनाम बैड फेथ वाला संघर्ष।
हाँ, खुद से सच बोलना बनाम खुद को धोखा देना, ये केंद्रीय संघर्ष है। क्या हम वो जिंदगी जी रहे हैं जो वाकई जीना चाहते हैं, या बस समाज को दिखाने के लिए या डर के मारे जी रहे हैं? ये सवाल रोज खुद से पूछने लायक है।
और भारत जैसे समाज में जहाँ सामाजिक अपेक्षाएं बहुत होती हैं, ये और भी मुश्किल हो जाता है कई बार।
बिल्कुल। चौथा क्या होगा?
ईश्वर विहीन दुनिया में मूल्यों का निर्माण। अगर कोई बाहरी नियम पुस्तिका नहीं है तो मनुष्य ही मूल्यों का एकमात्र स्रोत है। नैतिकता नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि रचनात्मक और जिम्मेदार तरीके से मूल्यों को चुनना और उनके प्रति प्रतिबद्ध होना है।
जब कोई देखने वाला न हो, तब सही काम करने का चुनाव करना, शायद यही असली नैतिकता है।
शायद हाँ। और पांचवा, कामों से लेते हुए एब्जर्ड एक शुरुआती बिंदु है, निराशा नहीं।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। जीवन की बेतुकी बातें, मुश्किलें, अर्थहीनता का एहसास, इन्हें अंत ना मानना, बल्कि इन्हें स्वीकार करना और फिर विद्रोह करना, जुनून और चेतना के साथ जीना।
सही कहा, अपने संघर्ष में ही गरिमा और अर्थ ढूंढना, जैसे सिसिफस में किया। हार ना मानने का जज्बा।
किताब में वाकई कुछ पंक्तियां या विचार ऐसे हैं जो दिमाग में अटक जाते हैं। आपने कुछ का जिक्र किया भी।
हाँ, जैसे बांस का ये कहना कि नास्तिक अस्तित्ववाद निराशा का दर्शन नहीं, बल्कि एक कठोर मानवतावाद है जो मूल्य और अर्थ बनाने की अंतिम जिम्मेदारी मनुष्य पर ही डालता है। ये पूरा नजरिया बदल देता है ना, निराशा की जगह जिम्मेदारी और संभावना।
बिल्कुल। और सार्त्र का वो विचार कि मनुष्य वह है जो वह खुद को बनाता है, वो हर पल मनुष्य का आविष्कार करने के लिए अभिशप्त है। ये अभिशप्त शब्द जोर देता है कि ये आज़ादी कोई आसान तोहफा नहीं, ये एक भारी जिम्मेदारी है जिससे हम बच नहीं सकते।
फिर बैड फेथ, खुद को एक वस्तु मानकर अपनी स्वतंत्रता की पीड़ा से भागना है। प्रामाणिक व्यक्ति इस स्वतंत्रता को पूरी तरह स्वीकार करता है, चाहे वह कितनी भी भयानक क्यों ना हो।
ये खुद से ईमानदार होने की एक सीधी चुनौती है।
और कामों के हवाले से सिसिफस वाली बात, एब्सर्ड नायक अपने नियति का तिरस्कार करके और अर्थहीन ब्रह्मांड के खिलाफ अपने विद्रोह को गले लगाकर खुशी पाता है। उसका संघर्ष ही उसकी जीत बन जाता है। ये मुश्किल हालात में भी गरिमा और हाँ खुशी बनाए रखने की प्रेरणा देता है।
और अंत में बांस का वो नजरिया कि साहित्य हमें केवल यह नहीं दिखाता कि हम क्या सोच सकते हैं, बल्कि यह भी कि हम क्या बन सकते हैं, ये साहित्य की ताकत को दिखाता है।
तो इन सब भारी भरकम लेकिन जरूरी विचारों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? कुछ व्यवहारिक तरीके।
हाँ बिल्कुल। सबसे पहला कदम शायद यही है, अपने जीवन का पूरा स्वामित्व लेना, पूरी ओनरशिप, परिस्थितियों या अतीत को दोष देने के बजाय ये पूछना कि ठीक है, ये हालात हैं, अब मैं क्या करना चुनूंगी। अपनी एजेंसी को पहचानना।
हाँ, दूसरा, प्रामाणिक करियर और जीवन पथ चुनना। क्या हम सामाजिक अपेक्षाओं के लिए जी रहे हैं या अपने चुने हुए मूल्यों के लिए? ये सवाल खुद से बार बार पूछना, ये आसान नहीं है पर जरूरी है।
तीसरा, नैतिक दुविधाओं का सामना करते समय याद रखना कि कोई बनी बनाई रूल बुक शायद ना हो। हर चुनाव सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि सबके लिए एक मिसाल कायम करता है, इसलिए सोच समझकर जिम्मेदारी से फैसला लेना।
चौथा, जब कभी अर्थहीनता की भावना घेरे तो बाहर किसी महान उद्देश्य को खोजने के बजाय खुद उद्देश्य बनाना। किसी परियोजना में डूब जाना, किसी रिश्ते को संवारना, किसी कारण के प्रति प्रतिबद्ध होना, या सिसिफस की तरह बस अपने रोज के काम को ही पूरे जुनून और विद्रोह के साथ जीने में अर्थ खोजना।
पांचवां, रिश्तों को बेहतर बनाने में। दूसरों को सिर्फ उनके लेबल या रोल, जैसे बॉस, ग्राहक, पत्नी, पति की तरह देखने की अपनी प्रवृत्ति को पहचानना। कोशिश करना कि रिश्ते आपसी स्वतंत्रता और सम्मान पर टिके हों, ना कि एक दूसरे को वस्तु बनाने या कंट्रोल करने पर।
और शायद सबसे अहम, लचीलापन विकसित करना, रेजिलियंस। ये स्वीकार करना कि दुनिया हमेशा निष्पक्ष या हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। ध्यान इस बात पर केंद्रित करना कि हम इस अन्यायपूर्ण या उदासीन दुनिया में गरिमा और विद्रोह के साथ कैसे जी सकते हैं, परिणाम चाहे जो भी हो।
सच कहूं, मेरे लिए इस पूरी चर्चा में सबसे कह सकते हैं कि आश्चर्यजनक बात ये थी कि कैसे अस्तित्ववाद के अक्सर नकारात्मक समझे जाने वाले पहलू, जैसे पीड़ा, एब्सर्ड, स्वतंत्रता का बोझ, को बार्न्स ने इतने सकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। ये दर्शन निराशाजनक नहीं बल्कि कार्रवाई का, एक्शन का आह्वान है।
हाँ, मेरे लिए भी यही, और मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि स्वतंत्रता और जिम्मेदारी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और जीवन का अर्थ वो कहीं बाहर रखा हुआ नहीं मिलता, उसे हमें भीतर से, अपने चुनावों और अपनी प्रतिबद्धताओं से, अपनी हिम्मत से बनाना पड़ता है। ये सोचने का एक बिल्कुल अलग, ज्यादा जिम्मेदार तरीका है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।